Hare Krishna, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कौर भक्त वृंद की श्रीमद् भागवतम की ऑल क्लोरिस्ट संबल डिवोटीज ऑल क्लोरिस्ट संबल डिवोटीज ऑल क्लोरिस्ट संबल डिवोटीज ऑल क्लोरिस्ट ऑल क्लोरिस्ट ऑल क्लोरिस्ट गुरु एन गौरांगा श्री प्रभुपादि की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तदोदयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद अध्याय 11वां इनका शीर्षक है कृष्ण की बाल लीलाएं। श्लोक संख्या नंबर 56। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। अथापि अभिभावन्ति एनम् न एव ते घोरदर्शना जिघांसया आसदय नाशयन्ति अगनो पतंगव। अथापि अभिभावन्ति एनम् अथापि अभिभावन्ति एनम् नैव ते घोरदर्शन नैव ते घोरदर्शन जिघांसयैनम् आसाद्य जिघांसयैनम् आसाद्य नाशयन्ति अग्नो पतंगव नाशयन्ति अग्नो पतंगव। अथापि अभिभावन्ति एनम् नैव ते घोरदर्शना जिघांसयैनम् आसाद्य नाशयन्ति अग्नो पतंगव। अथापि अभिभावन्ति एनम् नैव ते घोरदर्शना जिघांसैनम् आसाद्य नाशयन्ति अग्नो पतंगव।
Thank you.
माता जी। शब्दार्थ इस प्रकार है, अथापि यद्यपि उन्होंने आक्रमण करना चाहा, अभिवंती मारने से मारने में सक्षम है, एनम इस बालक को, न नहीं, एव निश्चय ही, ते वेसब घोर दर्शना देखने में भयावने, जिघांसया ईर्ष्या के कारण, एनम कृष्ण के असाध्य पास आकर नाशयंती नष्ट हो जाते हैं, आक्रमण की मृत्यु होती है, अग्नो अग्नि में, पतंग पतंगवत कीड़ों के समान। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्य गण अत्यंत भयावने थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए, क्योंकि वे निर्दोष बालक को मारने आए थे। इसलिए जो ही वे उनके निकट पहुंचे, तो ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंग मारे जाते हैं। तात्पर्य, नंद महाराज ने सहज भाव से सोचा, शायद इस बालक ने पूर्व जन्म में इस असुरों को मारा होगा, इसीलिए इस जीवन में वे उससे ईर्ष्या करके उस पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण अग्नि हैं और वे पतंग हैं, और अग्नि तथा पतंग की लड़ाई में अग्नि ही विजय होती है। असुरों तथा भगवान की शक्ति के बीच सदैव युद्ध चलता रहता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशायश्च दुष्कृतम्। जो भी भगवान के नियंत्रण के विरुद्ध हो, उसका वध जन्म जन्मांतर किया जाना चाहिए। सामान्य प्राणी कर्म के वशीभूत है, किंतु भगवान सदा ही असुरों पर विजय पाते हैं। होम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु चकटपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रिशुवानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछले कई दिनों से हम ये श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया, और बकासुर के वध होने के पश्चात ग्वाल बाल इत्यादि सभी, जब नंद महाराज इत्यादि सारे अन्य लोगों को, ब्रजवासियों को, जब उस स्थान के कथन के विषय में जब गीत के रूप में गाकर समझाने लगे तो लोग आश्चर्यजनक से सुनने लगे। और यहां पर आज के इन श्लोकों में नंद महाराज इत्यादि सभी ये विचार कर रहे हैं कि वास्तविकता ये किस प्रकार संभव हो सकता है। तो बताया गया है इन श्लोकों के अनुसार कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेक अनेक असुर आए। जब 6 दिन के बालक थे तब से अनेक अनेक असुर आते जा रहे, ये उस प्रकार हो गया जैसे कंस अनेक अनेक खिलौने भेज रहे अपने भांजे को और भांजा एक एक खिलौनों को तोड़ते जा रहे प्रेम पूर्वक। अब यहां पर कृष्ण ने इस बकासुर का भी वध कर दिया, तो ये विचार कर ये उनके मन में ऐसे इस प्रकार के धारणा प्रवेश हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये इस भगवान किस प्रकार, वो कृष्ण ने असुरों को मारा तो उसके विषय में सोचते हुए ये कहते हैं कि ये शायद उसी प्रकार है जिस प्रकार कृष्ण, क्योंकि इन पर बहुत विशेष कृपा है भगवान का और इसलिए अनेक अनेक असुर भी उसे मारने के लिए आए तो भी वो लोग सक्षम नहीं हुए। ये उस प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि के साथ पतंगा का युद्ध, अग्नि और पतंगा का युद्ध सनातन काल से चला आ रहा है, तो उसी प्रकार असुर और भगवान के दैवी शक्ति का जो आपस में जो स्पर्धा या युद्ध जो है ये अनादि काल से चला आ रहा है, और हमेशा भगवान की दैवी शक्ति ही विजय प्राप्त करती है, भले असुर कितना भी बलशाली भी क्यों ना हो तत्पर भी भगवान की शक्ति के समक्ष वो टिक नहीं पाते जिस प्रकार पतंगा अग्नि के समक्ष टिक नहीं पाता, अंततः गत्वा पतंगा का विनाश होता, और यही यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होता और इसी को हम एक एक शब्द से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आज के इन श्लोकों में पहले कहा गया नैव अभिभावंती, तो नैव अभिभावंती और नैव अभिभावंती अग्नो पतंगावत, यानी कि अभिभावंती यानी कि भगवान को मारने के लिए आए थे असुर लोग, नैव यानी नहीं कर पाए, वो लोग असफल हो गए। तो किस प्रकार असफल हो गए, तो उदाहरण दिया गया है अग्नो पतंगावत, जिस प्रकार अग्नि के समक्ष पतंगा आता है और वो पतंगा उसी में ही छलांग लगाकर अपने प्राण को गवा देता है, ठीक इसी तरह अनेक असुर भगवान को मारने आए मगर वो अपने कार्य में सफल नहीं हुए, उनका कार्य असफल हो गया। इसी प्रकार आज के तारीख में भी अगर हम देखेंगे जहां कहीं पर भी कृष्ण भावनामृत के भक्ति का अगर प्रचार भी होता होगा तो उस स्थान पर अनेक प्रकार के रोक टोक शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार के कंस के अनेक अनेक अनुचर लोग आते हैं
और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, मगर अग्नि को कौन रोक सकता है? अग्नि एक बार किसी को अगर पकड़ लिया तब फिर छोड़ना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अग्नि किसी को पकड़ा तो छोड़ना असंभव है। यहां पर जैसे कंस ने कृष्ण को दबा के रखने का प्रयास किया, जिस समय जब देवकी गर्भवती थी उस समय कंस ने देवकी को कारागार में रखे थे, और उन्होंने सोचा था कि इनके गर्भ से जैसे ही संतान होगा उसे मैं खत्म कर दूंगा, तो उनके मन में यही विचार था कि कृष्ण भावनामृत जहां कहीं हृदय में कब किसी का अगर फलित होता है तो ऐसे कंस लोग आ जाते उन्हें जेल कारागार में निरीक्षण करने के लिए उसे रख देते हैं, और इस प्रकार उन पर अनेक अनेक प्रकार के अत्याचार भी किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में जहां पर यह वर्णन आता है, सदेव की सर्व जगन निवास निवास भूत नितरान रेह भोजेंद्र गेह अग्नि शिखेव रुद्धा सरस्वती अग्नि कले यथास्पति। तो कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हुए बताते हैं, सदेवकी सर्व जगन निवास, देवकी के गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रवेश किए थे, निवास भूतन नितरात न रेहा भोजेंद्र गेह अग्नि शिखेव रुद्धा, वो उस प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार अग्नि शिखेव रुद्धा, जिस प्रकार देवकी गर्भ में संतान जो भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली थी वो उस प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार एक अग्नि को ऊपर से कुछ वस्तु आवरण करके रखा है, और वो थी देवकी। तो देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, और उन कृष्ण की यहां पर तुलना की गई है अग्नो शिखोन रुद्धा अग्नि शिखेवन रुद्धा, यानी कि वो अग्नि के समान था। अब जब अग्नि जब एक बार घर पर लग जाएगी तो वो कुछ ही क्षणों पे देखिए, पहले तो अग्नि घर के अंदर होगा और कुछ क्षण के बाद घर अग्नि के अंदर रहेगा। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान। तो वैसे अग्नि जिसे कोई नहीं रोक सकता, वो कुछ ही क्षणों में सारे दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह कोई अगर अपने हृदय में कृष्ण भक्ति को अगर जागृत कर रहे तो ये असंभव है कि उसे रोक पाए, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि स्वयं वो कृष्ण भावनामृत की अग्नि ऐसी अग्नि है जिसे किसी भी पानी से बुझा नहीं सकते। और वैसे यहां पर कंस ने अपने अत्याचार अनेक प्रकार के अत्याचार उनके समक्ष रख दिए थे, लेकिन तत्पर भी कृष्ण को जन्म देने के लिए कोई नहीं रोक पाया। कृष्ण प्रकट भी हुए और साथ में गोकुल भी चले गए, और कंस हाथ धरे के धरे रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया, जबकि अनेक पहरेदार रखने के बावजूद भी ये कंस की स्थिति थी। ऐसे ही आज के तारीख में लोग कृष्ण भावनामृत के प्रगति से घबराते हैं। जैसे रशिया जो कम्युनिस्ट एरिया है, वो कम्युनिस्ट एरिया में लोग तीन लोग से ज्यादा घबराते थे उस समय, श्लप्रभुपाद के समय पर ये तीन लोगों से वो ज्यादा घबराते थे। एक था रॉक एंड रोल, दूसरा था कोको कोला, और तीसरा था हरे कृष्ण वाला। ये तीन लोग से रशियन कम्युनिस्ट जो कंट्री था वो इतने घबराते थे कि इसीलिए हरे कृष्णा वाले अगर सड़क में अगर कीर्तन करते हुए भी दिखा तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते थे, यही उनका काम रहता था। मगर जब ये कम्युनिस्ट लोगों को भी जब जेल में अगर उसे डाल भी दिए तो भी वहां पर भी क्या स्थिति हुई, वहां पर भी जेल के अंदर भी ये जितने भी जो हरे कृष्ण वाले थे वो सब कीर्तन करने लग गए उसी स्थान पर, और यहां तक कि वो कैदियों अन्य कैदियों को भी सिखाने लग गए हरे कृष्ण महामंत्र, और सभी हरे कृष्ण बोलने लग गए। यहां तक कि वहां के जो जेल के पहरेदार देने वाले जो जेलर के अनुचर जितने भी थे वो लोग भी हरि बोल बोलने लग गए, और जब जेलर आया तो जेलर को भी बोलने लग गए हरि बोल। तो जेलर भी परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो जेलर ने सोचा ये हरे कृष्ण वाले सड़क में कम खतरनाक है, जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक है, इसे छोड़ दिया जाए, और उन्हें आजाद कर दिया गया। तो हरे कृष्ण वाले कहीं पर भी जाते हैं उनकी अग्नि को कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही जब एक बार अग्नि जब पकड़ लेता है तो पतंगा जैसे कितने भी बड़े बड़े पतंगे भी उनके समक्ष अगर युद्ध के लिए भी आ जाए तत्पर भी उसे रोक नहीं सकते। जब तमाल कृष्ण महाराज जब झूके इस्कॉन को जब देख रेख कर रहे थे उस समय की बात थी कि पुलिस लोगों ने उन लोगों को ये खबर मिला कि यहाँ पर ड्रग्स का स्मगलिंग होता है ये हरे कृष्ण आंदोलन में, तो उन लोगों ने अनेक प्रकार के छान सब शुरू कर दिए और श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल रूम पर भी घुसे, और तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत रोके कि नहीं ये हमारे गुरु महाराज का स्थान है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, मगर उन्होंने एक नहीं सुने और सब कुछ वहां पर तहस नहस कर दिया उस स्थान को, मगर कुछ हाथ में मिला नहीं। और फिर कहने लगे कि पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आकर इतना छान क्यों कर रहा हूँ। तो आगे जो मेन जो ऑफिसर थे वो तमाल कृष्ण महाराज को कुछ कहने लगे। तमाल कृष्ण महाराज कहने लगे हाँ हो सकता है कि आप हम विदेशी हैं तो आप लोगों को कुछ संशय होता होगा विदेशियों के ऊपर। बोला नहीं, तो फिर क्या समस्या। तो कहने लगे कि इस रविवार का दिवस है और इस रविवार के दिन में बगल में बड़ा रेस्टोरेंट है, बियर बार भी है, लोग वहां नहीं जा रहे और ये हरे कृष्ण मंदिर में आके क्यों कूदते समझ में नहीं आ रहा छुट्टियों के दिन में भी। तो वास्तविकता लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, जो कंस के जितने भी अनुचर लोग हैं उन लोगों को इस घुई बात के विषय में पता ही नहीं कि क्या हो रहा। तो वैसे ही जो रशियन कम्युनिस्ट एरिया कितना भी कृष्ण भावनामृत के वृद्धि को रोकने का प्रयास किया मगर रोक नहीं पाए। जहां पर गीता मैराथन के समय पर ऐसी एक वहां पर घटना घटी कि जब कुछ भक्त लोग चाहते थे कि रशियन कम्युनिस्ट एरिया में भगवत गीता का वितरण करें, अब वहां पर किताबों का वितरण करना मतलब जान के जान बाजी में रखे हुए करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस कार्य में सफल ही नहीं हो सकता। तो यहां पर दो भक्त लोग वैन में बैठ कर वैन के अंदर 10,000 भगवत गीता रखे और उसके साथ एक कुत्ता भी रखा और उस भगवत गीता के ऊपर कपड़े बिछाकर उसे ढक लिया गया। और यहां पर ये जब वैन जब सिक्योरिटी के पास जब वहां पर तलाशी के लिए वहां पर उस स्थान पर जब पहुंचे तो सिक्योरिटी ने पूछा कि क्या है गाड़ी के अंदर, तो बोला हमारा प्रिय कुत्ता है, यह हमारा परिवार का एक सदस्य है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप लोग कुत्ते को अंदर नहीं लेके जा सकते, नहीं नहीं ये तो हमारा परिवार का सदस्य है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। और वहां पर एक बहुत बड़ा सीन हो गया और लोगों का चर्चा शुरू हो गया, फिर अन्य सिक्योरिटी लोग भी आने लग गए और पूछताछ करने लगे क्या हुआ क्या समस्या। बोला ऐसी सी बात है, तो बोले कि ठीक है कुत्ते को छोड़ना पड़ेगा। तो अंत में उन लोग ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला तो कुत्ता भागने लगा, कुत्ता भागने लगा तो उनके एरिया के अंदर घुसने लगा और सारे सिक्योरिटी भागने लगे कुत्ते को वहां से भगाने के लिए, और इन लोगों ने पूरे 10,000 भगवद गीता अंदर घुसा दिया केवल उस कुत्ते की कृपा से। तो वैसे यहां पर कम्युनिस्ट के कितने लोगों ने इस प्रकार के भगवान के इस प्रगति को रोकने का प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास किया मगर सब विफल गया। वैसे यहां पर जो कहा गया है कि अग्नो, यहां पर जो शब्द कहा गया है कि अग्नो पतंगवत, यानी कि अग्नो पतंगवत यानी कि जिस अग्नि के समक्ष अनेक प्रकार के भी पतंगा आकर उसके साथ युद्ध भी करे, तत्पर भी पतंगा जो है वो विफल हो जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक के एक दशम स्कंद के इसी श्लोक को, सदेव की सर्व जगन निवास निवास भूतन नितरात न रेय भोजेंद्र गहे अग्नि शिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान कल यथा सती। इस श्लोक को समझाते हुए वो बताते हैं सरस्वती ज्ञान कले, सरस्वती ज्ञान कले यानी कि वो समझाते हुए ये बताते हैं कि ऐसे अनेक कंस के अनुचर लोग हैं जो वास्तविक ज्ञान को छुपा के रखे हैं और जो प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, और उनके मन में ये डर है कि कहीं ये प्रकाशित कर देंगे तो कहीं सत्य के सत्य धर्म का स्थापना ना हो जाए। तुम लोग छुपाने का प्रयास कर रहे, लेकिन अग्नि को कितने भी कपड़ों से अगर ढके भी जाए तत्पर भी वो अग्नि बुझने वाला नहीं है, वो तो जलेगा। जैसे बताया जाता है कि बाइबल में इतना बाइबल इतने संक्षेप में रूप में कैसे प्रस्तुत हुआ, तो बताते हैं कि टर्की में एक स्थान है जिस स्थान को कहा गया है कॉन्स्टेंटिनोपल, और इस कॉन्स्टेंटिनोपल के इस एरिया में जहां पर कॉन्स्टेंटिन एक करके एक राजा था, और एक कॉन्स्टेंटिन राजा ने एक वेश्या के साथ उन्होंने विवाह किया, और वेश्या के साथ विवाह करने के कारण वेश्या जो थी इनका पूर्व जन्म बड़ा कुकर्म होने के कारण इन्होंने अन्य लोगों के साथ जो जिन लोगों के आंखों के सामने इनका बुरा चरित्र था उन लोगों को इन्होंने मार दिया, और उन लोगों को मार डालने के कारण अब बाइबल में पुनर्जन्म के विषय में लिखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया उस बाइबल के उस पुनर्जन्म का जो पाठ था उसी अध्याय को उन्होंने बंद कर दिया या उसे हटा दिया, क्योंकि राजा था और राजा के निरीक्षण में ये धार्मिक ग्रंथ लोगों को दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इस रानी ने अपना सत्ता चलाकर उस बाइबल के अंदर का पुनर्जन्म के अध्याय को ही उन्होंने लुप्त कर दिया, और फिर उसके पश्चात बाइबल इस प्रकार उनका प्रचार हुआ कि पुनर्जन्म करके कुछ है ही नहीं। तो वास्तविकता उन्होंने सत्य ज्ञान को छुपाने का प्रयास किया। तो ऐसे सत्यता को छुपाने के लिए इस प्रकार के कंस के अनुचर होते हैं, मगर वो उस कार्य में सक्षम नहीं होते हैं। अब यहां पर दूसरा शब्द कहा गया घोर दर्शनम, यानी कि जितने भी लोग आए थे वहां पर अनेक प्रकार के असुर लोग आए थे कृष्ण को मारने के लिए, उन लोगों के दृश्य किस प्रकार दिखाई पड़ रहा था, घोर दर्शन यानी कि एकदम भयानक दिख रहे थे, क्योंकि हृदय में ईर्ष्या बनी हुई थी और उस ईर्ष्या के कारण व्यक्ति कुछ भी वस्तु को ठीक से या उसकी जो सुंदरता है उस सुंदरता को वो देख उसकी सुंदरता पूरी तरह कुरूप में बदल जाती है जब किसी के हृदय में ईर्ष्या प्रवेश हो जाता है। तो यहां पर भगवान के प्रति ईर्ष्या होने के कारण जितने भी असुर थे ये सभी लोग अपने कुस्वरूप को छुपा नहीं पाए, वो प्रकाशित हो जाता था। जहां पर रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब शूर्पणखा जो थी उन्होंने प्रभु राम की सुंदरता को देखकर मोहित होकर शूर्पणखा ने भी अपने रूप को बदलकर रामचंद्र जी के पास गए थे। तो यहां पर आचार्यगण शूर्पणखा के विषय में यह भी वर्णन करते कि शूर्पणखा का वास्तविक अर्थ क्या है, नखा यानी कि नखुन, तो शूर्पणखा यानी कि जिसकी चेतना नखुन के समान है, जो नाखून जीवित मनुष्य के शरीर में जुड़ने के बाद भी वो जीवित शरीर में रहने के बाद भी मरा हुआ, और वैसे ही नखा के समान होने के कारण शूर्पणखा दिखाई पड़ रही थी जीवित लेकिन उसकी भावना मर चुकी थी, इतना ईर्ष्या भरा था और भगवान राम के सुंदरता को देखकर वो आकर्षित होकर उनके समक्ष खड़ी हुई अपने सुंदर अपने कुस्वरूप को छुपाकर। तो प्रभु राम ने के प्रति उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि देखो तुम बड़े सुंदर हो और मैं चाहती हूँ मैं तो इस स्थान की रानी हूँ और मेरा परिवार बड़ा परिवार है, मेरा भाई रावण है और कुंभकर्ण है। अब यहाँ पर शूर्पणखा को लगा कि राम खुश हो जाएंगे सुनकर और वो अपना परिवार का रिकॉर्ड बता रही है कि कितना कैसे कैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं। और वो फिर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ विवाह करो और मैं आपको अनेक स्थान पर भ्रमण कराऊंगी, तुम चिंता मत करो, इस कन्या को छोड़ दो, ये जो तुम्हारे साथ जो स्त्री है इसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। तो राम ने कहा कि क्षमा करिएगा, आपका प्रस्ताव तो बड़ा लुभावना है लेकिन मैं इस प्रस्ताव को अब मैं स्वीकार नहीं सकता क्योंकि मैं एक इस समय में एक पत्नी व्रता हूँ और इसलिए मैं अपने पत्नी के साथ में हूँ, लेकिन आप इसी प्रस्ताव को लक्ष्मण के पास लेके जाओ। लक्ष्मण अब निठल्ला घूम रहे हैं, उनके पास अब कोई उनकी पत्नी नहीं है, तो आप उनके पास अपना प्रस्ताव रख सकते हो। तो जब शूर्पणखा जब गई उन्होंने देखी लक्ष्मण का ये भी कम नहीं है, तो उन्होंने अपना प्रपोजल डाइवर्ट कर दिया, राम के बदले लक्ष्मण को देने लग गए कि लक्ष्मण को कहने लगी कि आप चलो मेरे साथ। तो लक्ष्मण कहने लगे मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर सेवक हूँ और राम का सेवा करता हूँ, अगर आप मेरी पत्नी बनोगे तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम उसी की पत्नी बनो। अब यहाँ पर जब दोनों जन जब इस प्रकार करने लग गए तो शूर्पणखा समझ गए कि ये लोग मुझे इधर से उधर उछाल रहे हैं, तो समझ गए और उन्होंने जाकर देखी कि इसका मुख्य जड़ ये स्त्री है, वो है सीता। तुरंत ही उन्होंने अपने उस कुस्वरूप को छुपा नहीं पाई और भयंकर रूप में प्रकाशित हो गई और वो सीता माई को आक्रमण करने के लिए गई और उसी समय लक्ष्मण ने सर्जरी किया। तो उस प्रकार शूर्पणखा ने अपने उस कुस्वरूप को छुपा नहीं पाए, चाहे कोई कितना भी अपने उस अनर्थ को छुपाने का क्यों ना प्रयास करे लेकिन भगवान और भक्त के समक्ष वो अपने उस दूषित अनर्थ को छुपा नहीं पाता। जैसे बताया जाता है चाणक्य पंडित कहते हैं जले तैलम खले घुयम पत्रे दानम पात्र दानम मनागपी सहस्त्र स्वयं एवं विस्तार तक कुवस्तु शक्ति था। तो कहते ये जो चार वस्तु जो है ये चार वस्तु तुरंत ही फैल जाता है, वो रुकता नहीं है कितना भी रोकने का प्रयास करें। तो कहा गया जले तैलम यानी कि जल के अंदर अगर कोई एक बूंद अगर तेल का बूंद एक डाल दे तो तेल रुकेगा नहीं, वो फैल जाएगा, जले तैलम। और खले घुयम अगर किसी अगर कोई घुय बात को अगर आपको लोगों को विख्यात रूप में अगर बताना है तो अपने शत्रु को बता दो, खलनायक को बता दो, अब उसे जैसे ही ये बात सुनाई पड़ेगा वो तो फिर सभी दिशाओं पर उसका प्रचार प्रसार करेगा, खले घुयम। और फिर तीसरा पात्र दानम, अगर किसी पात्र योग्य व्यक्ति को अगर आप कुछ दान दो तो तुरंत ही पता लग जाएगा औरों को भी। और फिर अंत में कहा गया है मानगपी मनागपी यानी कि हृदय के अंदर के कुछ अगर अनर्थ है वह अनर्थ को व्यक्ति ज्यादा समय तक छुपा नहीं पाएगा। वैसे ही यहां पर असुरगण वह अपने अनर्थ को छुपा कर भी आते थे, जैसे पूतना कितनी सुंदर स्वरूप में आई थी लेकिन तुरंत ही उनका भयानक स्वरूप प्रकट हो गया, तो वैसे ही अनेक असुर भी भगवान के समक्ष आते थे, लेकिन कैसे उनका होता था? घोर दर्शनम, तो उनका दर्शन घोर होता था, बड़ा भयंकर, जिघांसया। और क्यों होता था उनका घोर दर्शनम? क्योंकि जिघांसया, क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना भरी रहती थी। और ईर्ष्या जो है, ये ईर्ष्या व्यक्ति के स्वरूप को या सुंदरता को नष्ट कर देता है, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या जो है। और विनम्रता जो है, कितना भी व्यक्ति कुस्वरूप वाला भी क्यों ना हो, वो विनम्रता उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। तो वास्तविक जो शक्ति जो है, वो शक्ति केवल विनम्रता में है, ना कि किसी अन्य वस्तु में। जैसे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज, दोनों को अगर आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो बाहरी तौर से दिखाई पड़ता है कि दुर्वासा मुनि बड़े बलशाली और शक्तिशाली है, लेकिन उनके बल और उनकी शक्ति विश्वामित्र मुनि के नम्रता के सामने कुछ नहीं था। और इसीलिए दुर्वासा मुनि इतने कठोर और बलशाली तपस्वी होने के बाद भी विश्वामित्र मुनि की विनम्रता के समक्ष उनको झुकना पड़ा, उनके पैरों को छूना पड़ा। तो वैसे जब कोई अपने हृदय में जब कोई विनम्रता को प्रकाशित करता है तो वो सुंदरता को बढ़ा देता है, और जब ईर्ष्या को प्रकाशित करता है तो वो उसके कुस्वरूप को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ऐसे ही जितने भी असुर आते थे वो ईर्ष्या की भावना से आते थे। तो ये ईर्ष्या जो है वो उस प्रकार है कि वो ईर्ष्या जिसके हृदय में है वो दूसरे को भी नुकसान करता है और खुद भी उसका परिणाम को प्राप्त करता है। जैसे बिच्छू जो होता है, ईर्ष्या की तुलना बिच्छू के साथ किया गया है। ये बिच्छू वो उस प्रकार है जैसे बिच्छू बड़ा जहरीला है, जब डंक मारता है तो जहर फैलता है, लेकिन वही बिच्छू जब गर्म धूप में या तपती धूप में अगर रहता है तो जब उसे चटका लगता है तो वो अपने आप को ही काटना शुरू करता है, और अपने आप को इतने जोर जोर से, जितना काटता उतना दर्द बढ़ता है और उतना दर्द बढ़ता है और जोर से काटता है, और इस तरह अंततः गतवा बिच्छू अपने आप को ही मार देता है। तो ठीक इसी तरह ईर्ष्या जो है, जब किसी कार्य में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो अहंकार बढ़ता है, और जब किसी कार्य में विफलता प्राप्त होता है तो वो हताश परेशान होकर अपने आप को ही वो खो देता है। इस तरह जो ईर्ष्या व्यक्ति के लिए अपने आप में ही वो नुकसान करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पद इसे इस ईर्ष्या के विषय में वर्णन करते हैं कि विद्वेष नष्ट मथय स्त्रिय दारुण चेतसा। वो बताते हैं कि ये ईर्ष्या के दो परिणाम से ये ईर्ष्या बरसती है, और वो क्या है? तो कहते हैं विद्वेष दारुण चेतसा। तो ये जो ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर कब प्रकाशित होता है? जब किसी वस्तु को, जब भोगने की, जब वस्तु, जब भोगने की भावना जब हृदय में जागती है तो उसके प्रति जब उसका लोभ उत्पन्न हो जाता है, जिस लोभ से उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि मेरे अलावा इस वस्तु का स्वामी और कोई नहीं हो सकता, इस प्रकार वो भोगने की भावना से ईर्ष्या जागती है। इसलिए कहा गया है दारुण चेतसा, यानी कि हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। तो कठोर हृदय कब हो जाता है? जब किसी वस्तु को व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने का इच्छा रखता है। तो जब भोग जो है, जो भोग भगवान से, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम त्या पर्यत अचेतसाम। जब कोई विषय वस्तुओं को भोगने का प्रयास करता है तो उसकी जो चेतना जो है वह हर ली जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर उनका हृदय कठोर हो जाता है, जिस कठोर हृदय में भक्ति रूपी लता बीज का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का खेती करना विचार रखना ही मूर्खता है। तो वैसे प्रथम उसका ये स्थिति होता है विद्वेष दारुण चेतसा, उनका हृदय कठोर हो जाता है। और दूसरा तो दूसरा बताया गया विद्वेष नष्ट मथय, यानी कि उनकी मति हर ली जाती है, विवेक बुद्धि लिप्त हो जाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और वो उदाहरण है चित्रकेतु की पत्नियां। 1 करोड़ पत्नी थी, मगर उनके 1 करोड़ पत्नी बाकी जितनी भी पत्नी थी वो एक पत्नी से और चित्रकेतु के उस सुख को देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या भर चुकी थी। और वैसी ईर्ष्या की ग्राम दतु कुमार्य कौमार्य दुर्मर्ष नृपतिम प्रति, उन्होंने ऐसा उनके हृदय में ईर्ष्या भर गया कि उन्होंने एक शिशु जो मासूम शिशु को उन्होंने जहर देकर मार दिया। ये उनके हृदय की ईर्ष्या थी, यानी कि उनकी जो विवेक बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाती है इस ईर्ष्या से। तो यहां पर जो इस श्लोक में जहां पर कहा गया झिघाम से, यानी कि जितने भी असुर थे वो कुरूप स्वरूप के दिख रहे थे क्योंकि उनके हृदय में झिघाम से ईर्ष्या की भावना थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ, नाशयंती, आए थे भगवान को मारने, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उनका ही नाश हुआ। इसलिए यहां पर आगे वर्णन किया गया नाशयंती। तो जब कोई भगवान के विपक्ष अगर कोई खड़ा है, कितना भी बलशाली भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति अधिक समय तक नहीं टिक सकता। हिरण्यकश्यपु इतना बलशाली था, पूरे विश्व को जीत लिया था, सैथम निर्जित काकुप एक रात विषयान प्रियान, उनके टक्कर में या उनकी स्पर्धा में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा था, एकमात्र अकेला राजा था। लेकिन हिरण्यकश्यपु की स्थिति क्या थी, इतने बड़े बलशाली, सारे देवतागण उनकी भ्रुगुटी हिलने मात्र से थरथर कांपते थे, वैसे हिरण्यकश्यपु अंततः गत्वा भगवान से केवल नाखून से मारा गया। भगवान को और कुछ उपयोग नहीं करना पड़ा, केवल नाखून। अब शरीर में नाखून मतलब बड़ा कम शक्ति के रूप में माना जाता है, और भगवान ने केवल उनका ट्रीटमेंट केवल नाखून से किया। तो यहां पर ये बताया गया है कि अंततः गत्वा बड़े बड़े असुर भी भगवान के समक्ष नाशयंती, नाश हो जाता है। जैसे अर्जुन और दुर्योधन, दुर्योधन ने 11 अश्विनी सेनाओं को इकट्ठा करके रखा था, उनका जो सिक्योरिटी जो था दिखाई पड़ता था बड़ा तगड़ा है, लेकिन भगवान के समक्ष या भगवान के विरुद्ध, जब भगवान के भक्त के विरुद्ध जब वो खड़ा रहा जो केवल 7 अक्षुणी के साथ था, जबकि अर्जुन के दल में कोई इतना बलशाली नहीं दिखाई पड़ रहा था जो भीष्म पितामह करण इत्यादियों को सामना सामना करे, लेकिन तत्पर भी क्योंकि वो धर्म के या कृष्ण को अपने पक्ष में रखने के कारण ऐसे बड़े बड़े असुरों का भी उन्होंने संहार किया। इसलिए शास्त्र में बताया गया है स्थान प्रधान न बल प्रधान, स्थान जो है वो मुख्य है ना कि बल। जैसे पुराण में कथा आती है कि जब बहुत बड़ा विश्व यज्ञ हो रहा था तो सारे देवी देवतागण और स्वयं नारायण भी आए थे उस स्थान पर, तो उस समय महादेव के गले में सर्प था। अब सर्प ने जब गरुड़ को देखा, नारायण के वाहन को जब देखा, तो वो सर्प जो था वो गरुड़ को फुस फुस कर रहा था, तो वो हुस हुस कर रहा था। और तब उस समय गरुड़ ने देखा और गरुड़ ने कहा, अच्छा महादेव के गले में बैठा इसलिए, ये बेटा एक बार नीचे उतर, तू जो हुस हुस कर रहा है तुम्हारा फुस फुस कर दूंगा। क्योंकि वहां पर जो सर्प जो था वो महादेव के गले में बैठा था, और महादेव के गले में बैठने के कारण स्थान प्रधान न बल प्रधान। वैसे ही अगर हमने अपने स्थान को अगर कृष्ण भावनामृत के स्थान पर अगर अपने आप को खड़ा किया है तो कितना भी बल सामने क्यों ना आए वो प्रधान नहीं है। मुख्य प्रधान यह है कि वो कौन से स्थान पर खड़ा है। इस तरह यहाँ पर सारे ग्वाल बाल सभी लोग कृष्ण के स्थान पर खड़े रहने के कारण बड़े आसानी से उन लोग ने इस लीलाओं को बड़े रोचक पूर्वक से दर्शन किया, जिसके वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा कुछ कमेंट? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की।